ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी को उड़ने के पंख तो लग ही गए हैं। बुद्धि रूपी विमान को फर्श से अर्श में ले जाना बहुत अच्छा, ये गोल्डन चांस आप सबने लिया है। वैसे तो मैं समझता हूँ 6-7 महीने अपने अपने स्थानों पर और विशेष करके आपके अहमदाबाद गुजरात में सभी ने बहुत अच्छी तपस्या की है, मनसा सेवा भी की है, अपने घरों में रह करके बाहर की सेवाएं जब नहीं हैं, तो ये भी ब्राह्मण आत्माओं को अच्छा चांस मिलता है। कई बार मैं मणिनगर के ग्रुप से मिलता रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेज भी कराई हैं, और आज जब आप सभी मधुबन घर में शांतिवन में आए हैं तो मुझे विशेष टॉपिक मिली, डबल लाइट स्थिति द्वारा सेवा। क्योंकि अगर हमारी स्थिति में कोई प्रकार का बोझ है तो सेवा करना संभव नहीं है। बाबा ने हम सब बच्चों को डबल लाइट भाव का वरदान दिया है। मैं समझता हूँ जिस दिन से हम बाबा के बने, निश्चय हुआ, पहचाना, बाबा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, कोई भी बोझ, कोई भी जवाबदारियां जो मेरी थी उन सब को अर्पित करके हम सब डबल लाइट बन गए। अभी भी जवाबदारी तो नहीं रखी है कोई, प्रवृत्ति में थोड़ी बहुत तो होगी ना, नहीं है? प्रवृत्ति वाले तो घर गृहस्थ में रहते हैं, कहते हैं क्या करूं, बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, समाज है, बहुत सारी बातों का बोझ कईयों पर रहता है। लेकिन अगर संपूर्ण निश्चय हो जाता है तो आत्मा एकदम निश्चिंत होकर के सब कुछ समर्पित करके बुद्धि से डबल लाइट बन जाती है। मैं इसका एक मिसाल बताता हूं। हमारे लौकिक में पिताजी जब ज्ञान में आए, निश्चय हुआ, एक धक से कोई चीज की परवाह नहीं की, एक धक से सब कुछ छोड़ा और बाबा की सेवा में लग गए। बहुत पेपर आए, उनके बड़े भाई जो थे हमारे दादाजी, वो बहुत विरोध करते थे, उनको दुकान से निकाल दिया। सेवा में लग गए तो सरकारी नौकरी थी, सेक्रेटरी थे, पंचायत सेक्रेटरी, वहां से डिसमिस कर दिया गया। अभी आप समझ सकते हो परिवार के अंदर इतना नशा चढ़ गया उनको कि मैं तो बाबा का, बाबा मेरा, बस और कुछ नहीं चाहिए। परिवार में हम लौकिक में 3 भाइयों के बीच में इकलौता बेटा, एक बहन एक भाई 2 थे। मुझे तो कभी भी कोई लौकिक संबंधियों का पता ही नहीं है, और कोई लौकिक संबंधी हैं मेरे होंगे तो बहुत, मामा मामी चाचा चाची, लेकिन पिताजी ने बचपन से ही एक पक्का कर लिया कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और उस निश्चय के आधार से बहुत सारी समस्याओं को, बहुत बड़े पेपर्स को पास किया, बेगरी पार्ट को भी पास किया, घर के अंदर कुछ भी नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं बाबा ने, लोगों ने ली। लेकिन एक बल एक भरोसा। जब पहली बार कहते हैं, पिताजी बताते हैं, जब मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी, सब ने कुछ न कुछ भेजा, जैसे यज्ञ में भेजते हैं ना, तो जब वहां की निमित्त टीचर जो थी गांव में, जिसने ज्ञान दिया था, वो पार्टी जब आने लगी तो पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भेजने के लिए नहीं था। उन्होंने बहुत प्यार से एक पत्र लिखा बाबा को, कुछ थोड़ा सा कणा दाना कहते हैं गरीब का, कि बाबा ये सुदामा की चावल मुट्ठी आप स्वीकार करना। और लोगों ने तो बहुत कुछ भेजा था बाबा के घर में, तो जब वो बाबा को पत्र मिला और बाबा ने उसको देखा, सारे पत्रों को छोड़ करके उसी पत्र का जवाब बाबा ने दिया और कहा, लौकिक में पिताजी का नाम गुरु प्रसाद था, तो बाबा ने लिखा कि एक ही बच्चे को अभी सच्चा प्रसाद मिला है, गुरु का प्रसाद एक बच्चे को मिला है। तो उनको इतना नशा चढ़ गया, और नशा चढ़ा दिया बाबा ने, कि हमें ही प्रसाद मिला, इतने सब ने पत्र लिखे, इतने सब ने भेजा यज्ञ के अंदर, एक कोई पत्र का जवाब आया बाबा का। उसके बाद जब मम्मा गांव में आई 1960 में 35 दादियों को लेकर के, चाचा जी यहाँ हैं अभी भी, काफी बुजुर्ग हैं, 98 ईयर्स के हैं, कुमार ही हैं, शांतिवन में ही हैं। वो बताते हैं कि जब मम्मा आई तो मैं कुमार था, बहुत शर्मिला था, मम्मा के सामने सब कहते थे मम्मा आएगी तो गोद में जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ये कहते मैं सामने नहीं जाना चाहता था। मम्मा की दृष्टि पड़ी और एक सेकंड में मम्मा की गोदी में गिर गए। मम्मा ने अपने हाथ से बहुत प्यार से सहलाते हुए उनको अपनी टोली खिलाई और बहुत सारे वरदान दे दिए। परीक्षाएं आती गई, कई बातें आई, मेरे लिए तो बहुत सारी परीक्षाएं थी, क्योंकि मैं दादाजी सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारी में ये गया तो कुल दीपक कौन बनेगा, घर में तो कोई चाहिए ना एक, और मुझे भी कोई ज्ञान का निश्चय नशा नहीं था कि मुझे कोई बाबा मिला है या पिताजी, हमारा नाम तो लिख देते थे पत्र में बाबा को, और बाबा की तरफ से पत्रों द्वारा हमारी पालना होती थी। इन बाबा कानपुर गए, बाबा के पास आए, पिताजी सारा परिवार आया, मैं नहीं आया, और बाबा की नजर तो पड़ी थी, कैसे बाबा ने वहां से निकाला है, बड़ा वंडरफुल इतिहास है। लेकिन वो उनका जो निश्चय था उसके कारण वो इतना निश्चिंत थे। जब मुझे मधुबन में दादी जी ने कहा, मेरी जब मैं पहली बार आया ना 71 में, तो यहाँ एक मास रहा, इतना दादियों का प्यार पालना परिवार मिल गया, तो यहाँ आते ही मेरे को आया कि मुझे यहीं रहना है, यही मेरा घर है। और मैं 15 साल का था, दादी कहे अरे 18 साल के पहले हम किसी को नहीं रखते हैं, अभी तो और पढ़ना पड़ेगा, और तुम लौकिक में इकलौते बेटे को कोई छुट्टी नहीं देता घर में, कैसे देंगे तुम्हारे पिताजी। फिर भी बड़ा आश्वासन दिया, अच्छा छुट्टी अगर मिले ना तो एक साल पढ़ करके आ जाना और फिर चिट्ठी लेके आना, ऐसे नहीं आना। सचमुच वो दिन मुझे याद आते हैं कि जब मैंने पिताजी को बताया कि दादी ने ये कहा है, एक साल में ही मैंने पढ़ाई जो करनी थी कर ली, और पिताजी ने इतना प्यार से निश्चय से पत्र लिख करके दादी के लिए दिया, और वो शब्द जो हैं वो ये थे, दादी ने गेट पर ही खड़े खड़े पढ़ा पत्र, जब मैं अंदर आया ना पांडव भवन में प्रवेश हुआ, दादी रास्ते में ही मिल गई, चलते चलते घूमते, तुम आ गया क्या, मैंने कहा हाँ दादी, पत्र दिखाओ, पत्र लाओ। जब पत्र मैंने हाथ में दे दिया, वही गेट पर मुझे याद आता, पांडव भवन के गेट पर दादी ने खड़े खड़े पत्र पढ़ा और कहती, अच्छा तुम्हारे पिताजी को इतना निश्चय है। उसमें ये शब्द थे कि जब भगवान इस धरा पर आया है और वो नई दुनिया बनाने का कार्य कर रहा है। ये बच्चे अगर इसमें सहयोग थोड़ा सा दे दें तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। ऐसे निश्चय से नशे से पत्र लिखा और एक लाइन और लिख दी कि दादी इनको तो चांस दिया आपने, बहुत अच्छा मेरा भाग्य है, लेकिन हो सके तो मुझे भी दे देना। तो दादी कहती अच्छा वो घर बाहर छोड़ करके भी आ सकता है क्या। लेकिन ड्रामा की सीन थी और उनका निश्चय इतना टूट था, 4-5 साल मैं मधुबन में रहा और माता जी ने शरीर छोड़ दिया। अब घर में चाचा पिता ताऊ तीनों कुमार हो गए, कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई घर संभालने वाला नहीं, और सारा समाज एक तरफ और पिताजी का निश्चय एक तरफ। मैं तो उसको नहीं बुलाऊंगा, अब मेरे लिए सब प्रकार की तैयारी, शादी की ये वो सब, आएगा तो उसको बांध देंगे, शादी करेंगे लौकिक वाले। जब मैं गया तो एक लड़की भी गांव में घर में ही थी, रख लिया था उन्होंने पहले से, वो संबंध में ही थी कि आएगा तो भले रहे जा करके, शादी करके यहाँ छोड़ के जाए, घर में तो कोई चाहिए ना घर को संभालने वाला। मैंने कहा भाई मेरी शादी हो गई है, मैं तो भगवान के पास आ गया घर में, मैं तो शादी करने तो नहीं आया हूँ, भोग लगाने आया हूँ माँ का। बड़ी मुश्किल से भोग लगाया और बाबा का संदेश आ गया, 3 दिन से ज्यादा वहां नहीं रहना, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, गया था 13 दिन के लिए। बाबा की एक संदेशी थी हमारे साथ, उसने ट्रांस में जाके देखा, बाबा दिखा दिया उसको कि ये बंधन है बहुत, और अगर रह गया तो इसको बांध देंगे ये लोग, जबरदस्ती करेंगे कुछ न कुछ। तो मैं तो 3 दिन में ही भोग लगाया सब किया और वापस। ने कहा भाई आपको जो करना है करो, बाबा ने मुझे तो बुला लिया है, मेरे तार आ गई है, टेलीग्राम आ गई है। और पिताजी ने बड़े प्यार से छुट्टी दी, फिर कहते करना क्या, वो तो बताओ हमको करना क्या है। हमने करना क्या है, जो माताजी ने संभाल के रखा ना सब बेच दो, सब दे दो यज्ञ में दे दो, बर्तन जेवर कपड़े शादियों के लिए। माताजी ने गुप्त गुप्त तैयारियां की हुई थी, उनका भी तो मुंह था ना। लेकिन उनका जाना और घर के अंदर पेपर तो आए, लेकिन वो निश्चय जो था उनका, सब कुछ हमने बिचवाया, यज्ञ में दिलवा दिया। नया खेती बाबा की नहीं बेचना, घर नहीं बेचना, घर में गीता पाठशाला चलाओ, खेती से जो आएगा घर भी चलेगा और यज्ञ में भी आएगा। अभी मैं होके आया हूँ इसलिए सुना रहा हूँ, अभी मेरे को भी काफी पैसा मिला वहां से यज्ञ के लिए, क्योंकि गांव वाले कर रहे हैं लौके कोई नहीं है। पिताजी आके समर्पित हो गए, चाचा जी समर्पित हो गए, ताऊ जी शरीर छोड़ के चले गए, दुकान बेच दिया, खेती नहीं बेची, घर नहीं बेचा, घर में बहुत अच्छी गीता पाठशाला है, अभी भी 10-12 लोग क्लास करते हैं, हम लोग 10-15 लोग जाते हैं तो आराम से रहते हैं, पक्का घर बना लिया है, सब व्यवस्थाएं। और बड़े प्यार से बाबा का जैसे आश्रम बना हुआ है, कुलदीपक बाबा बैठा है घर में। निश्चय की विजय है, जरा भी कहीं संशय आता और इतना डबल लाइट स्थिति, क्या होगा कैसे होगा, आगे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उन्होंने अपने को समर्पित किया, यज्ञ में रहे, यज्ञ में ही शरीर छोड़ा, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर डबल लाइट स्थिति किसी को बनाना है तो सब जवाबदारियां बाबा के ऊपर अर्पित कर दो, समर्पित। जब तू मिल गया बाकी क्या चाहिए, वो निश्चय वो नशा अगर है तो किसी भी प्रकार की जिम्मेवारियां बोझ बंधन नहीं बनती। लेकिन जब तक जरा भी कोई भी प्रकार की हलचल है, पता नहीं विनाश होगा या नहीं होगा, बच्चे बड़े होंगे उनकी शादी करनी होगी, उनको ये करना होगा, बहुत सारे लोग पेपर प्रश्न करते हैं। पिताजी को बोलते थे तुम किसी के शादी ब्याह में नहीं जाते हो, तुम्हारे घर में कौन आएगा जब इनकी शादी करोगे, तुम्हारे घर में कौन भोज बनाएगा कि ये करे, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये शादी करना होगा करेंगे, हमको नहीं परवाह है। हमको नहीं करनी किसी के साथ ही। इतना निश्चय से नबल लाइट स्थिति, छोड़ा तो छूट गए। बाबा कहते ना, छोड़ो तो छूटो, बंधन छूट गए, कोई भी बांध नहीं सका अपने आप में। वो बहुत हल्के होकर के बाबा जैसे रखे, जिस हालत में रखे, जो सेवा कराए, हमको बाबा की सेवा करनी। तो आज हम डबल लाइट स्थिति किसको कहा जाता है? एक है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। बोझ किसका है? सबसे बड़ा बोझ तो शरीर का है ना, आत्मा को बंधन भी है, बोझ भी है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा स्वरूप में भी लाइट है, हल्की भी है और प्रकाश स्वरूप भी है, बिंदु ज्योति बिंदु कहते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही डबल लाइट स्थिति है। इसको ही हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता क्या है? उसको हड्डी मांस का शरीर नहीं है, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। कुछ दिन पहले एक मुरली बाबा की चली थी, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा, बाबा ने कहा था कि बच्चे बाबा से अपनी दिल की रूह रिहान करते हैं, लेकिन बच्चों को बाबा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर कहते हैं, मैं तो एक तरफा बाबा को बोलता रहता हूं, बाबा तो कुछ बोलता ही नहीं है, थक जाते हैं। लेकिन रूह रिहान का रिस्पॉन्स लेने की विधि नहीं आती। अगर विधि यथार्थ है तो क्यों नहीं बाबा बोलेगा, क्यों नहीं जवाब देगा? बच्चे अपनी इस मिट्टी की ड्रेस को भूलते नहीं है, इसी ड्रेस से मेरे से मिलना चाहते हैं। मैं सदा लाइट की ड्रेस में हूं, मैं चमकीली ड्रेस में रहता हूं, और बच्चों ने देहमान वाली मिट्टी की ड्रेस पहनी है, तो सामना ही नहीं होता, मिलन ही नहीं होता, बात का रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? इसलिए अगर हम सबको बाबा से व्यक्ति मिलन मनाना है, रूह रिहान करनी है, शक्ति लेनी है, सकाश लेनी है, तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा एक लाइट हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। जब हम अपने भ्रकुटी आसन पर थोड़ा समय भी बैठते हैं और इससे अलग अनुभव करते हैं, तो एक सुंदर एक लाइट का कार्ब, लाइट का आभा मंडल जैसे अनुभव होने लगता है, और उस लाइट के शरीर से आत्मा अपने लाइट के वतन में बाबा से मिलन मनाती है। फिर जो बातें कहती है, दिल की बातें बाबा सुनता है। आवाज तो मुख की समझता नहीं, आप गुजराती में बोलो, कर्नाटक वाला अपने कन्नड़ा में बोले, कोई तमिल में बोले, कोई इंग्लिश में बोले, कोई फ्रांस में बोले, बाबा समझ जाएगा क्या सबकी भाषा, मुख की भाषा, ये भाषा दुनिया की भाषा है। बाबा हमारी भावनाओं की भाषा समझता है, हमारे स्नेह की भाषा समझता है। अगर हमारी बहुत सच्चे दिल की भावनाएं हैं, प्यार से हम बाबा कह रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं, तो कोई भी भाषा में कहो, बाबा को फट से पता चलेगा बच्चा मुझे याद कर रहा है। इसलिए बाबा अपने बच्चों की हर दिल की भाषा को समझता है, अंदर की भाषा को समझता है, मुख की भाषा नहीं। इसलिए हम सब बाबा से अगर रिस्पॉन्स चाहते हैं, रूह रिहान का उत्तर चाहते हैं, तो हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। लाइट के दो अर्थ हैं, एक हल्का है, एक प्रकाश है। प्रकाश क्या है? कोई ये स्थूल प्रकाश नहीं है आत्मा का। प्रकाश ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, ज्ञान एक लाइट है। कहते हैं इसके पास ज्ञान की लाइट है, इसलिए अंधकार नहीं है, ठोकर नहीं लगती। जिसके पास ये ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को लेकर के पार्ट बजाने आई हूं, मैं अलग हूं, ये ज्ञान उसके लिए प्रकाश का काम करता है। ज्योति स्वरूप आत्मा की जो बिंदु स्थिति है, उस बिंदु स्वरूप की स्थिति की स्मृति ही लाइट है। वो लाइट नहीं दिखाई देगी कोई जुगनू जैसी चमक रही है, वो तो इन आंखों से देख भी हम नहीं सकते, लेकिन अपने प्रकाश स्वरूप में अर्थात ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, उस स्मृति में रहना कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, तो देखना नहीं कोई आंखों से या अपनी बुद्धि से भी कोई चीज को देखना नहीं है। कई लोग देख करके कहते हैं ये बिंदु दिखाई दी मुझे। कई बार बाबा कहते हैं अच्छा बिंदु को तुमने देख लिया। जैसे विवेकानंद का मिसाल देते हैं ना कि उनके गुरु के सामने वो गए तो उनकी आत्मा उसमें से निकली और उनमें प्रवेश हुई, साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते अच्छा आत्मा का साक्षात्कार किया। वो आत्मा थी या परमात्मा थे, दोनों बिंदु रूप हैं। साक्षात्कार कोई आंखों से देखने की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। तो जब हम अनुभव कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक बहुत शक्तिशाली ज्योति बिंदु हूं, तो उस बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होते ही आत्मा जैसे इस शरीर से अलग हो जाती है और अनुभव करने लगती है कि मैं एक लाइट के शरीर से लाइट के वतन में हूं। इस फर्श को छोड़ करके उस अर्श की स्थिति का अनुभव होने लगता है, सूक्ष्म वतन जिसको हम कहते हैं। अभ्यास चाहिए इसके लिए। अब बार बार हम इस मिट्टी के देश में आए हैं, बहुत सारा बंधन बना के रखा है, ये जवाबदारी, ये बोझ, उड़ती कला का अनुभव नहीं होता। सब जवाबदारियां बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जब संगम युग पर मैं आप बच्चों का ओबीडियंट बन करके आया हूं, जो तुम कहते हो ये मेरा है, इसको तेरे में बदल दो। बाबा ये सब तेरा है। संबंध भी है तो ईश्वरीय सेवा के लिए है। जिनके साथ हम रह रहे हैं ये सेवा के लिए संबंध मिले हैं, ये कर्म बंधनी संबंध नहीं है। बाबा ने हमें मर्जीवा जन्म दिया, ये हमारा अलौकिक जन्म मर्जीवा जन्म है। हम इस मर्जीवा जन्म में बाबा के साथ, केवल एक बाबा, दूसरा न कोई, सब संबंध एक बाबा के साथ है। बाकी सबके साथ संबंध निभाने के लिए है, सेवा के लिए संबंध है, बंधनी संबंध नहीं है। ईश्वरीय सेवा के लिए संबंध मिले हैं, ये स्मृति अगर रहेगी तो आप लाइट रहेंगे, बंधन मुक्त रहेंगे। योग के लिए तीन चीजों की जरूरत है, नहीं तो योग लगेगा ही नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो। सबसे पहले आंतरिक खुशी चाहिए, बहुत खुशी। नशा पेट्रोल का काम करता है, कहते हैं प्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। अगर जरा भी मिक्स हो गया पेट्रोल में तो प्लेन उड़ेगा नहीं। हमारे इस बुद्धि रूपी प्लेन के अंदर अगर मनमत और परमत का किचड़ा मिक्स है, कहीं बुद्धि उड़ के नहीं जाएगी, योग नहीं लगेगा। श्रीमत डबल रिफाइंड पेट्रोल है, नशा और खुशी, उमंग उत्साह हिम्मत, ये पहला पेट्रोल है। दूसरा हल्कापन, बहुत लाइट, कुछ नहीं मेरा, सब बाबा तेरा। जितनी जवाबदारियां हैं बुद्धि से अर्पित करो। अगर प्रवृत्ति है तो मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं एक बाबा ने ट्रस्टी बनाया है, संभालना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बन करके ईमानदारी से वफादारी से सबकी सेवा करो, पालना करो और न्यारे हो जाओ। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आप किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, कितना भी कोशिश करो। आज भी बाबा कितना निश्चिंत बना रहे थे, ऐसा ज्ञान सुना दो, समझाओ, लेकिन चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, ये ज्ञान में चलता नहीं, मैंने इतनी मेहनत किया, ये किया, बेफिक्र। बस स्थापना होनी है, नई दुनिया आनी है, वो तो कोई रोक नहीं सकता। इतना निश्चय जिसको है वो निश्चिंत है, कोई ज्ञान सुने या न सुने, कोई माने या न माने, हमारी सत्ययुग दुनिया आनी है। कई परिवार में रह करके अधिकार होता है और अधिकार के कारण अपने बच्चों को भी जैसा मैं हूं ऐसा होना चाहिए उनको, फिर टेंशन पैदा होता घर के अंदर, झगड़े शुरू हो जाते, मैंने इसको जन्म दिया, इसको बड़ा किया, इसको पाला, इसको पढ़ाया, इसको इतना योग्य बनाया, ये मेरी सुनता ही नहीं है, बस टेंशन पैदा। उसके हिसाब किताब, उसके कर्म, उसका बंधन अपना है, आपका फर्ज है उसको गाइड करना। आज देखो बाबा क्यों बेफिक्र है, क्यों हल्का है, बाबा जैसा टेंशन किसी को नहीं होता। बाबा कहता मेरे जितने बच्चे तो किसी को भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा मैं बछड़े वाल हूं, इतने बच्चों का बाप हूं, लेकिन बेफिक्र बादशाह। खाने के लिए भोजन नहीं है। बाबा को भंडारे वाले पूछ रहे, बाबा दोपहर को क्या बनेगा? बच्चे वेट एंड सी, ठहरो आ जाएगा। किसी माँ बाप के पास दो चार बच्चे हों, कितना टेंशन होगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहां से आएगा? मांगने से मरना भला, मर जाना, मांगना नहीं किसी से। एक तरफ बाबा ये पढ़ा रहा है, मांगना नहीं किसी से, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, फिर भी बेफिक्र बादशाह, चलो बच्चे जंगल में ले जाए, वहां करौंदा जामुन जो जंगल में खाओ। फिर घर में आके कहता, अच्छा तो तैयार हो जाओ, रेस्ट करो। 10 बजे पोस्ट में पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, और टाइम पर बेल लगी है। ऐसा नहीं एक घंटा भी लेट हो जाए, भोजन सबको मिला। बाबा ने परीक्षाएं तो ली, नहीं तो शायद क्या कहें, ये जो सेवाएं हुई, जो विस्तार हुआ, अगर बाबा ने परीक्षाएं नहीं ली होती तो ये लोग कोई सेवा में निकलने वाले नहीं थे। बाबा खिला रहा है, आराम से रह रहे हैं, घर में बैठे हैं, क्यों जाएंगे सबके पास सेवा करने? और बाबा कहता, धन दिए धन ना कुटे, बच्चे ज्ञान धन का दान करो, वो धन अपने आप आएगा, उसकी चिंता नहीं करो। दादियां किस स्थिति में यज्ञ से निकली हैं, आप लोगों ने सुना हो, शायद पढ़ा हो इतिहास, यज्ञ का इतिहास। जब कुछ नहीं यज्ञ के अंदर है, और बाबा इनको इतना बल भर के निश्चय बैठा करके, अरे बच्चे तुम्हारे पास जितना धन है दुनिया में किसी के पास नहीं है, चरित्र का धन है, गुणों का धन है, ज्ञान का धन है, शक्तियों का धन है, जाओ इसको बांटो। वो बल भर करके, वो निश्चय बुद्धि से बाबा ने इनको भेज दिया। किसी को पता नहीं कहाँ जाना है। गुलजार दादी बड़ी रमणीकता से कहानी सुनाती है कि बाबा ने कहा, जाओ बच्चे लखनऊ में गवर्नर हाउस में प्रदर्शनी करना जाके। बाबा लखनऊ कहाँ है? अरे बच्चे अंधों ने मुल्तान ढूंढा, लखनऊ तुम नहीं ढूंढ सकते हो। दादी बड़े प्यार से सुनाती है कि बाबा ने इतना बल भरा, मैं गई, पहुंच गई वहां, और रिक्शे पर जब बैठी, पैडल रिक्शे वाले बहुत हैं यूपी में, तो वहां पर बैठी तो बोला, गवर्नर हाउस में ले चलो। वो देख करके, कुमारियां इतनी छोटे छोटे, गवर्नर हाउस में क्या करोगी दीदी, वहां जाके गवर्नर हाउस में ले चलो सीधा ही। वहां जाके सेवा किया, वहां स्थान लिया, प्रदर्शनी लगा दिया, सेवाएं शुरू कर दी। बाबा ने बल भरा था, पहुंच गई जाकर। कुछ भी नहीं, कोई भी पैसे की बात नहीं, पता ही नहीं पैसा क्या होता है, और सेवाएं शुरू की और क्या से क्या बना दिया। तो इन भाई बहनों ने, हमारे बाबा ने, दादियों ने उस त्याग से, उस डबल लाइट स्थिति, मैं वो कहता हूं डबल लाइट स्थिति थी, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, भगवान हमारा साथी है, वो निश्चय था, वो नशा था, पेपर आए लेकिन उसको बहुत सहज पास कर लिया। अब सब एक शब्द को पक्का करना, पास शब्द को, पास, बस और कुछ नहीं याद रखो, पास। डबल लाइट बन जाओगे, जो कुछ बीत गया उसको पास कर दो, पास्ट इज पास्ट, पास करो, और लक्ष्य रखो मुझे सदा बाबा के पास रहना है, समीप रहना है, और हर समस्या को पास करना है। कोई भी पेपर आए पास हो करके दिखाना है, और पास विधानर बन करके रहना। अगर ये पास शब्द याद कर लेंगे ना, तो डबल लाइट बन जाएंगे, जो बाबा के पास रहेगा। अगर हमारे साथ कोई बहुत पैसे वाला, बहुत शक्ति वाला, हर प्रकार की पद पोजीशन वाला साथी हो, और मैं कमजोर हूं, कितना नशा रहता है, कोई बात नहीं, वो करा देगा, हो जाएगा। हमारा साथी बहुत शक्ति वाला है। हम सबका साथी कौन है? निश्चय माताओं को हमारे साथ कौन है? अरे स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला जिसको कहते हैं, वो हमारे साथ है। उस निश्चय और नशे से रहो, बाबा हमारे साथ है, उसके संग का रंग लगेगा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा साथी है वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे। अगर बाबा को हम ऐसे साथी बना करके रहते हैं, कमजोर आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि बाबा हमारा इतना शक्तिशाली है, सर्व शक्तियों से संपन्न अलमाइटी है। तो बाबा के साथ समीप रह करके जो उनके गुण हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो अपने अंदर अनुभव करते चलो। बस मैं हमेशा योग जब कराता हूं ना, मैं कहता हूं परमधाम में नहीं जा सकते, कोई हर्जा नहीं, परमधाम वाले को बोलो तुम यहां आओ, बैठो आकर के मेरे मस्तक में। मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे मेहनत लगती है, आप तो सहज आ सकते हो, लेकिन वो शक्ति, वो दिल का प्यार चाहिए। तो योग के लिए खुशी है, दूसरा हल्कापन है, तीसरा स्वच्छता है। स्वच्छता अंदर बाहर की सच्चाई सफाई। जरा भी अगर गंदगी है तो बाबा को आप अपने समीप नहीं बुला सकते। गंदगी क्या है? किसी से ईर्ष्या है, किसी से नफरत है, किसी से घृणा है, पर चिंतन है, पर दर्शन है, तेरे मेरे में हम उलझे हुए हैं, मन के अंदर इधर उधर के विचार चल रहे हैं। बाबा को बुलाते रहो, टाटा करेगा आएगा नहीं। इसलिए मन को बड़ा निर्मल बनाओ, बड़ा स्वच्छ। क्या चाहिए ऐसे हल्के हो जाओ जो बाबा को अपने आप खींच हो जाए, ये बच्चा बड़ा स्वच्छ आ जाए। स्वच्छता। आज बाबा ने 48 साल गुलजार दादी के द्वारा पाठ बजाया, और मैं समझता हूँ आप सब ने गुलजार दादी को देखा है, समीप से देखा होगा। चलो बाबा आए वो अलग बात है, वैसे भी देखा है गुजरात वालों ने। तो कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल आत्मा। ऐसे थोड़ी भगवान रथ बनाएगा अपना, जरा भी कोई भी प्रकार की कोई बातें अंदर नहीं रखी उन्होंने, किसी की नहीं रखी। कभी हम लोग जाते थे, दादी ऐसा है वैसा, जैसे सुन ही नहीं रही, उसको पता ही नहीं चलता क्या है। इनोसेंट इन बातों से कभी जवाब नहीं दिया होगा। कितनी भी बातें हम लोग करें, कभी कभी सुनाते थे, पत्र आए हैं, ये हुआ वो हुआ ऐसा है, मुस्कुराने के सिवाय कुछ नहीं जानती है। अच्छा ऐसा है, कोई बात ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है। अपने अंदर उस बात को उन्होंने नहीं लिया। इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल आत्मा है जो भगवान ने उसको अपना रथ बनाया। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे होंगे, ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन जिस रथ में भगवान रहे हूं, भगवान इसी ब्रह्मा को लोग मानने लगे थे। शिव बाबा को तो पहचानना बहुत बड़ी बात थी, ब्रह्मा ही सब कुछ है। हमारी दादियां भी कहती थी ब्रह्मा ही तो है सब कुछ, लेकिन उसमें शिव बाबा कैसे रहे गुप्त रीति से, बड़ा वंडरफुल पार्ट होगा। अरे बच्चे किसी को दृष्टि दे दूं, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए। बड़ा नशा था ब्रह्मा बाबा को भी, और बहुत साधारण कर्म। कोई साधारण कर्म से ये नहीं कहा ये मेरा काम थोड़ी है, मैं तो श्री कृष्ण की आत्मा हूं। उल्टा नशा नहीं था, निर्माणता, निरहंकारिता। जाता था लोटा लेकर के बाहर, कोई बाथरूम लेटरिन थोड़ी थे कंबाइंड, टेंट लगाया हुआ था, टाट ऐसे ही चाहो तो से बंधा हुआ था, लेटरिन बाथरूम वही था, उसी में जाता था आराम से। कहता था बच्चे, बाबा के ऊपर बाल्टी डालता, एक भाई नहलाता था, चंद्रराज दादा हमारे स्नान कराते थे, किस पर बाल्टी डालते हो? शिव बाबा की पिंडी है, शिव बाबा की पिंडी पर चढ़ा रहे हो क्या? निशे से बोलता था, शिव बाबा इसमें बैठा हुआ, भगवान बैठा हुआ है। गोबर से, गोबर और कोयला आता था घर में, हमारे कोयला बहुत आता था पहले, कोयले से ही खाना बनता था, चूल्हे जलते थे, तो उसका चूरा जो होता है ना, चूरा कोयले का और गोबर से जब मिला देते हैं तो उसका गोला जो बनता था इतना बड़ा बड़ा, बाबा खुद बनाता था, और हम लोग जब शुरू शुरू में आए तो बनाते थे। या हमारे पास दो भाई थे उस समय, वो जो रेल चलती थी ट्रेन कोयले वाली, उस कोयले वाली ट्रेन के वो ड्राइवर थे दोनों भाई, वहां से रिटायर हुए, समर्पित हो गए यज्ञ में। एक खन्ना जी थे, एक गुरुमुख दादा थे, बुजुर्ग थे, 60 साल की उम्र, रिटायर हुए और समर्पित हो गए यज्ञ में, प्रवृत्ति वाले थे। और उनको बस और कुछ नहीं, मैं बाबा के घर में कोयले का ही काम करूंगा, कोयला ही झोंकते थे वहां ट्रेन में। और कोयले की ट्रेन वहां से धनबाद से उधर से बिहार झारखंड से ले आए और ला करके यहाँ पर उसको छानते थे। हम लोग कहते थे मदद करो, सब कोयला छानते थे। उसका जो चूरा होता था ना, हमारे घर में यहाँ 15-20 गाय थी बाबा की, 2 बैल भी थे उस समय, 70 में 71 में थे। उसका गोबर और चूरे को मिलाते थे पानी के साथ, उसके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे और वही बॉयलर में जलाते थे, टंकी में, बॉयलर में, भंडारे में, एक दो चार रख दो लकड़ी के ऊपर, तो इतनी आग होती थी तेज, उसी से भोजन बनता था, उसी से पानी गर्म होता था, वही चलता था। अभी तो सब अलग सिस्टम हो गई, लेकिन जब बाबा वो बनाता था तो ऐसे ऐसे बना करके ऐसे उछाल देता था, कहता अरे देखो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला है, विश्व का गोला। अरे बच्चे कोई आ जाए, बाबा ये साधारण काम हम लोग करेंगे? नहीं बच्चे, बाप भी करेगा, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे। बाबा वो काम भी करता था छोटा, कोई कह सकता था इसमें भगवान बैठा है? इतना निरहंकारी, इतना निर्माण चित, इतना स्वच्छ मन, इतना पवित्र दिल, तब तो भगवान ने उसको चुना होगा। अगर 1932 की पूरी डायरी आप पढ़ो सुनो, आज मैंने यूट्यूब में देखा 1932 की डायरी कोई ने उसमें भरी है एक चैनल में, मैंने पूरी सुन लिया, मैंने टाइप तो मैंने ही किया है, लेकिन आज देखा सुना, हमने कहा वाह क्या बाबा ने बातें की हम मन से, वजीर कह करके तुम मुझे, हे मूर्ख तुम मुझे तंग करता है, भगवान का ध्यान नहीं करने देता है, भटकता है, भटकाता है मुझे, क्या बाबा ने उससे बातें की होंगी। 1932 में मेहनत करके अपने आप को पावन बनाया, तब 36 में बाबा आए, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, कर्म इंद्रिय जीत बन गया। तब तो कन्या माता है, उनको देखते ही कहती थी बाबा गुम हो जाता तो यहाँ लाइट दिखाई देने लगती थी, इतना हल्का, तो ऐसे उठा लेती थी आकर के, बाबा क्या करे, बाबा बच्ची क्या कर रही है, बाबा क्या पता है, इनको तो ये शरीर दिखाई नहीं दे रहा हो तो लाइट दिखाई दे रही। आप समझ सकते हो ये अभ्यास डबल लाइट स्थिति का, कोई आपको देखे और ये मिट्टी की ड्रेस गुम हो जाए, यहाँ लाइट दिखाई देने लगे। कई बार बाबा ने बात कही है कि जब अंत समय में चारों तरफ हाहाकार होगा, लोग एक दूसरे का बाबा कहते खूने ना है खेल होगा, उसमें सेफ्टी का साधन ये डबल लाइट स्थिति है। ऐसे खूने ना है खेल के समय अगर आपने अभ्यास किया है तो सामने वाला अगर आपके सामने कोई गलत भावना से आएगा, मिट्टी की ड्रेस गुम हो जाएगी, यहां लाइट दिखाई देने लगेगी। यादगार में जब कृष्ण का 8वां जन्म जो बताया है, जब उसके वध के लिए कंस ने उसको बुला लिया, मंगाया, तो वो तो पहले से निकल चुका था वहां से, उसकी जगह पर कन्या आई, वो भी एक लाइट थी, कन्या नहीं लाइट ही थी, और जब उसको मारना चाहा कि नहीं कन्या हो या बच्चा हो मैं तो मारूंगा क्योंकि 8वां है, और जब ऐसे पकड़ा और मारने लगा तो उड़ गई वो लाइट, लाइट थी वो, तो यादगार क्यों बनी? क्योंकि बाबा ने हम सबको लाइट स्वरूप में बनाया। कोई ऐसी भावना से भी हमारे सामने अगर आए तो ये शरीर उनके आगे ना हो, हम लाइट दिखाई दे, हल्कापन, लाइट। वैसा अभ्यास करना पड़ेगा, अंतिम पेपर में पास होने के लिए हम सबको ऐसा लाइट बनना है, और इसके लिए जितना हो सकता और कुछ नहीं, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करो। अगर कोई है तो बाबा आपने निमित्त बनाया है, ट्रस्टी बनाया है, मैं आपका बच्चा हूं, बच्चे के ऊपर कोई बोझ होता ही नहीं है, बाप बैठा है, जवाबदार वो है, हमें निमित्त बनाया, हम तो खेल खेल रहे हैं, जो कार्य, जो सेवा, जो नौकरी, जो समाज की सेवा मिली हम कर रहे हैं, कराने वाला वो है। अगर इतना निमित्त भाव आपके जीवन में आ गया, आप हल्के हो जाएंगे, बहुत लाइट, बहुत स्वच्छ मन, बाबा को बुलाओ, बाबा को साथ, ऐसे संबंध हो बाबा से प्यार का, बाबा ये काम आपका है करो, बाबा दौड़ करके आ जाएगा, भाग करके आ जाए। भक्तों के सामने आ गया, बच्चों के आगे क्यों नहीं आएगा? भक्तों ने अधिकार से अगर भगवान को कहा है तो भगवान दौड़ के आया है। हमारा तो बाप है, हमारा तो अधिकार है उसके ऊपर, लेकिन सच्चाई बहुत चाहिए। जरा भी अगर उसमें थोड़ा सा भी मिक्स हो गई, पता नहीं वो तो निराकार है, वो तो परम धाम में रहता है, आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, कैसे मदद करेगा। कई कुमारों के अनुभव में सुनता हूं, कई ऐसे कुमार हैं जो बहुत निश्चय बुद्धि पक्के हैं, कुछ भी हो जाए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि कुमारों को बड़ा डर लगता है, बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, कौन मदद करेगा, बीमार पड़ गए कौन भोजन खिलाएगा, कौन पानी देगा। आज जो ज्ञान में चलने वाले कुमार फेल हुए हैं ना, उनके कारण, उनका कारण यही रहा, वो समझते हैं हम तो अकेले हैं, हमको कौन पूछेगा, बहने तो पूछेंगी नहीं, सेंटर पर तो अधिकार नहीं हमारा, इसलिए जाके शादी कर लेते बेचारे, चले जाते सहारा बना लेते। लेकिन जो पक्के आज तक चले हैं, शुरू शुरू के कुमार बहुत सारे हैं, उनको एक बल एक भरोसा, बाबा अपने आप मदद करेगा। और मैंने देखा है कि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा के एकदम हर पल बाबा कहते हैं और उनके सामने सब हाजिर हो जाते, कोई न कोई प्रकार से उनको मदद देने वाले पहुंच जाते हैं, मांगते नहीं है, समय पर उनको साथी मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे चाचा लोग की जो यहां रहते हैं ना, इनके पैर का ऑपरेशन करवा दिया, वो फेल हो गया पैर का ऑपरेशन, दो चार साल चला ठीक। उसके बाद एक दिन नक्की लेक गए थे घूमने के लिए, बरसात पड़ी तो भूल गए कि मेरा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ लगाई तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए, जो नट बोल्ट लगे होंगे उनको पता ही नहीं था, अब वो पस बन गया, परेशान हो गए, पस बना। मैंने कहा भाई इसको निकाल दो, भी निकालना पड़े, निकाला तो उसके बाद डॉक्टर ने उसमें सीमेंट भर दी, कहा एक दो साल के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन कर देंगे। अब बड़ी आई 80 साल के ऊपर, फिर डॉक्टर ने बोला भाई पता नहीं सफल होगा नहीं हो, जैसे चले वैसे चलने दो। और वो भी कहे मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, शांतिवन में मैंने रखा यहाँ एक विश्राम भवन में, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा, मुझे कोई सेवाधारी नहीं चाहिए। वो आकर के ऊपर अपने कपड़े रखना, धोबी घाट में डाल के आना, लेके आना, खाना खा के आ जाना, कोई सेवाधारी नहीं चाहिए। एक सेवाधारी पता नहीं कहां से बिहार से आया, उसने देखा चाचा जी सब अपने आप कर रहे, मेरे पीछे लग गया भाई जी, चाचा जी की मुझे सेवा करनी है, मेरे पीछे लग गया ना। वो कहते हैं मुझे सेवाधारी नहीं चाहिए, कहता नहीं ऐसा समय मुझे लगता है करनी चाहिए, मैं करूंगा। अब उसने सामने से आकर के, कभी नहीं उन्होंने मांगा मेरे से, कोई डिमांड नहीं की, जब मिलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बुजुर्ग आयु में कोई को भी देखो टेंशन कितना होता है, तंग कितना कर देते हैं, लेकिन वो तो ऐसे हल्के, इतने डबल लाइट हैं, कभी डिमांड ही नहीं किया, और वो सेवाधारी सामने से आकर के पीछे लग करके उसकी सेवा कर रहा है। अभी थोड़ा अधीन हो गए, बड़ी आयु हो गई, लेकिन उस समय तो एकदम जरूरत नहीं थी और सेवाधारी आ गया। तो मैं कहता हूं अगर बाबा पर बल एक बल एक भरोसा, बाबा पर निश्चय है, बाबा पर बिल्कुल 100% हम समर्पित हैं, तो बाबा अपने बच्चों को दुखी देख सकता है, परेशान देख सकता है, अकेला देख सकता है, कहीं ना कहीं से साथी मिलेंगे। क्यों हम अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं, क्यों बंधन बना रहे हैं? आज जिन्होंने भी बंधन बना लिया, अब वो सुखी हैं क्या? उनका योग लगता है? कितना भी कहें हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम गंधर्वी विवाह करके रह रहे हैं, हम ऐसे रह रहे हैं, लेकिन एक पूछ तो लग गई पीछे पीछे, बंधन तो बन गया। कहीं ना कहीं कोई बीमार पड़ेगा, कभी कुछ होगा, कहीं ना कहीं माया चमाट मारती है। डबल लाइट स्थिति माना क्या? कहीं भी कोई बंधन मुझ आत्मा को खींचे नहीं। बाबा करण करावनहार है, बाबा साथ है, उसका साथ में मिला है, निमित्त बनाया है, बच्चे बन करके रहो, सब बातों से बच जाओगे। इसलिए बहुत लाइट होकर, बहुत हल्के होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने बिंदु रूप को देखो, मैं आत्मा बिंदु हूं। बिंदु वैसे भी लाइट है, इस शरीर के अंदर आंखों में अगर बिंदु ना हो, आंखें कितनी भी सुंदर हो देख सकेगा, ये बिंदु ही तो है अंदर चमक रही। ऐसी आत्मा बिंदु स्वरूप है, हल्की है, ज्योति स्वरूप है, और उस स्वरूप में स्थित होते ही इस साकार सृष्टि को हम छोड़ सकते हैं। जैसे विमान जब उड़ता है तो पहले दौड़ लगाता है और दौड़ लगाते एकदम ऊपर चला जाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं देह की दुनिया से उड़ने के लिए पहले अच्छा चिंतन करो, बुद्धि को दौड़ाओ, मनन करो, चिंतन करो, समान में स्थित हो जाओ और फिर धीरे धीरे इस धरनी को छोड़ दो, सूक्ष्म वतन मूल वतन की यात्रा करो। तो जब हल्कापन है, निमित्त भाव है, कुछ नहीं मेरा है, मैं तो एक बाबा का हूं, बाबा मेरा है, बस डबल लाइट बन जाएंगे और योग बहुत सहज है। योग लगाने की मेहनत नहीं, कभी देखा दादियों को योग लगाने की मेहनत करते हुए, ऐसे नेचुरल योगी है, योगी जीवन है, योग लगाने वाले थोड़ी हैं हम। ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, एक दो घंटा अभ्यास कर लेते हो फिर नेचुरल हो जाता है, लेकिन नेचुरल हमारी योगी जीवन है, दो चार घंटा आठ घंटे वाले नहीं, लेकिन निरंतर योगी हैं। और निरंतर योगी के लिए केवल संकल्पों के चिंतन पर ध्यान दो, बहुत अच्छे ज्ञान का चिंतन करो, कल परसों बाबा की मौली में था स्वचिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, शुभ चिंतन करो। अगर स्वचिंतन, शुभ चिंतन और ज्ञान चिंतन चल रहा है तो योग तो नेचुरल लग जाएगा। जहां पर चिंतन है, तेरा मेरा है, वहां पर योग में मेहनत है। तो जब भी बैठो अपना चिंतन करो, मैं आत्मा अनादि स्वरूप में क्या थी, कितनी पवित्र, कितनी निर्मल, परमधाम घर में शिव बाबा के साथ लाइट माइट से संपन्न उस स्वरूप मेरा क्या था, अनादि स्वरूप को देखो। फिर आओ सृष्टि मंच पर आए, योग बल से आत्मा ने जन्म लिया, प्रकृति दासी है, सेवाधारी है, सत्व प्रधान है, सब वैभव है, सब प्रकार की संपत्ति है, सब खजानों से संपन्न है, सतयुग दृष्टि मर्ज कर लो, देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के देवपद की अनुभूति करो। फिर जन्म लेते लेते नीचे आते गए, कलाएं कम होती, फिर देवपद में जब द्वापर में प्रवेश किया तो हमारे ही मंदिर बने, हमने मंदिरों में पूजा की, अच्छे पुजारी बने, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, लेकिन वो भी बहुत श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग, भक्ति काल में भी बहुत ऊंचे रहे हैं, छोटी मोटी भक्ति नहीं की है, तिवाटों की भक्ति नहीं की हम लोगों ने, एक शिव बाबा की भक्ति के व्यभिचारी भक्त बन करके रहे। आप सब जो बाबा के बच्चे हैं यहाँ पर, आप बहुत पुराने भक्त हैं, तब तो भगवान ने भक्ति का फल दिया है। इस जन्म में भले हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन द्वापर के जो शुरू शुरू के भक्त रहे, एक भगवान की भक्ति जिन्होंने की है, उनको ही कलयुग के अंत में संगम पर बाबा फल देता है, भक्ति का ज्ञान समझ, वो ज्ञान मिला, सदगति जिससे होती है। तो भक्ति काल भी हमने प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे कलयुग में आए, लास्ट में बाबा मिल गया। तो बाबा जो पांच स्वरूपों की दिल सिखाता है ना, यही पांच स्वरूपों के दिल है, निराकारी स्वरूप परमधाम में बाबा के साथ हैं, फिर साकार में देवता पद है, देवपद का वैकुंठ का अनुभव है, उसके बाद पूज्य पद का अनुभव है, फिर साकार में ब्राह्मण जीवन का अनुभव है, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो यही पांच स्वरूपों के दिल है, और क्या है, इसमें योग नहीं लगता है, माना इसको हम बार बार अभ्यास में नहीं लाते हैं, नेचुरल अभ्यास हो जाए, जब बैठो यही चिंतन चलता रहे, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, कितनी पवित्र आत्मा थी, ये अपवित्रता कहां से गई, देह मान के कारण आई, जितना बॉडी कॉन्शियस बढ़ाए विकार वार करने लगे, इन विकारों पर जीत हो गई तो आत्मा पावन बन गई, आत्मिक स्थिति से आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन गई। तो अभी समय अनुसार हम सब इसका अभ्यास करें, बहुत डबल लाइट होकर के, हल्के होकर के, अपने स्वरूप को देखो, अपने स्व का चिंतन करो, चिंतन करते करते इस देह की धरनी को छोड़ करके सूक्ष्म वतन और मूल वतन की यात्रा करो। तो सभी करेंगे ना अभी एक घंटा, करेंगे ना, सब बैठे हैं ना, वैसे सबका योग लगा हुआ है, टूटा तो नहीं है, अगर कहीं उठना हो तो उठ जाओ, दो मिनट पांच मिनट के लिए फ्रेश होना हो, नहीं तो एक घंटा पे हिलेंगे नहीं। कोई को जरूरी हो तो जाना हो, फ्रेश होकर के आओ, नहीं तो सब बहुत अच्छी तरह से। अभी हम सब एक घंटे की रूहानी यात्रा करेंगे। काल तख्त पर बैठकर भ्रकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखो। हम सब एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे, ये बुद्धि की यात्रा। जो हमें इस आकार दुनिया से दूर सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से दूर अपने सूक्ष्म लोक का अनुभव कराएगी। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं उस चमकीली फरिश्ता ड्रेस को पहनकर अपने अव्यक्त वतन की यात्रा पर हूं। बाप दादा उसी फरिश्ता ड्रेस में मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। अनुभव करो बाबा के मस्तक से निकलने वाली पवित्र किरणें। स्नेह और शक्ति से संपन्न किरणें मुझ आत्मा को डबल लाइट फरिश्ता बना रही। समान भाव का वरदान दे रही है। बाबा का वरदानी लाइट का हाथ मेरे मस्तक पर है। सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व वरदानों से भरपूर डबल लाइट फरिश्ता इस विश्व के ग्लोब पर बाप दादा से मिली हुई शक्तियों का दान दे रही हूं। चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस शक्ति संपन्न वाइब्रेशन फैलते हुए अनुभव करो। नजर से निहाल करने की सेवा करो। सभी लाइट के रेज से अलग अपने चमकते हुए स्वरूप को परमधाम घर में अनुभव करो। निराकारी दुनिया जहां हम सब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ उनके सानिध्य में उनकी शक्तियों के आधार से टिकी हुई हैं। उस घर में असीम शांति है। किसी भी प्रकार के संकल्प की भी हलचल नहीं। उस ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर की गहराई में चले जाओ। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आत्मा उस परमात्मा सागर में समा गई है। शांति शक्ति पवित्रता की अनुभूति में खो जाओ। अभी हम सब बहुत प्रेम से अपने परम प्रिय शिव बाबा को अव्यक्त रूपधारी ब्रह्मा बाबा को इस सभा के बीच में आमंत्रित करेंगे। हर एक अपने दिल आसन पर, भ्रकुटी आसन पर बाप दादा को स्वच्छ स्थान दे दो, अनुभव करो ये दोनों दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। एक तरफ परम पवित्र परम प्यारे शिव बाबा और साथ में आदि पिता ब्रह्मा बाबा, मैं उनका अति प्रिय सपूत बच्चा उनके साथ कंबाइंड हूं, उनकी दिव्य शक्तियों से संपन्न हूं। सभी मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठो, उनके संग के रंग के अनुभव में खो जाओ। कितना सुंदर मिलन है,
मैं मास्टर पतित पावन बाप दादा के संग उनके समान स्वरूप में स्थित हूं। लाइट और माइट से संपन्न हूं, संपन्नता की किरणें चारों ओर फैलाओ। अभी अपने पूज्य स्वरूप में भक्तों के इष्ट देव इष्ट देवियां अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य आत्मा हूं, इष्ट देव आत्मा हूं। अनेक अनेक भक्त आत्माएं मुझ आत्मा को पुकार रही हैं। मैं चैतन्य स्वरूप में इस मंदिर में विराजमान एक चैतन्य मूर्ति हूं। बाप दादा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। मेरे द्वारा सर्वात्माओं की हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। अपने इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में स्थित होकर हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण करो। शांति का दान दो, सुख का दान दो, निर्भयता का दान दो, अपने शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैलते हुए अनुभव करो। हर आत्मा व्यर्थ से नेगेटिविटी से मुक्त हो रही है। सभी तक की सकास पहुंच रही है। अपने देव स्वरूप में स्थित होकर दिव्यता का दान करो।
Baby.